जाते हैं। त्रैवर्ग मतलब धर्म अर्थ और काम, इन तीनों की ही केवल जो कामना करते हैं त्रैवर्ग कहलाते हैं, क्योंकि वे तीन उन्नतिकारी विधियों यानी पुरुषार्थों में रुचि लेते हैं। वे उस भगवान से विमुख हो जाते हैं जो बुद्ध जीवों को विश्राम प्रदान करने वाले हैं। वे भगवान की उन लीलाओं में कोई रुचि नहीं दिखाते जो भगवान के दिव्य विक्रम के कारण श्रवण करने योग्य हैं। भगवान का जिन दिव्य पराक्रम है श्रवण करने योग्य जो भगवान की लीलाएं हैं उनमें उनकी कोई रुचि नहीं होती है। त्रैवर्ग कास्ते पुरुषां विमुखां हरि मेधसः कथायां कथनीयोरुं विक्रमस्य मधुद्विषः। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं, वैदिक विचारधारा के अनुसार चार उन्नतिकारी सिद्धांत यानी पुरुषार्थ हैं, जिनके नाम है धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष। जो लोग भौतिक सुख में रुचि रखते हैं वे नियत कर्म करते रहते हैं, वे तीन उन्नतिकारी विधियों धर्म अर्थ और काम में रुचि रखते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति सुधार कर वे भौतिक जीवन का आनंद उठा सकते हैं। फलता भौतिकतावादी व्यक्ति केवल उन उन्नतिकारी विधियों में रुचि रखते हैं जिन्हें त्रैवर्ग कहा गया है। तय का अर्थ है तीन, अच्छा त्रय हाँ, और वर्ग का अर्थ है उन्नतिकारी विधियां। ऐसे पुरुष कभी भी भगवान के प्रति आसक्त नहीं होते अपितु वे उनके विरुद्ध रहते हैं। यहाँ पर भगवान को हरिमेधा कहा गया है जिसका अर्थ है जन्म तथा मरण के चक्र से उद्धार करने वाला। भौतिकतावादी व्यक्ति कभी भी भगवान की आश्चर्यमय लीलाओं को सुनने के प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखाते, वे इन्हें कपोल कल्पित कहानियां मानते हैं। भगवान की जो कथाएं हैं उसको क्या मानते हैं? कपोल कल्पित मतलब काल्पनिक है, कपोल कल्पित कहानियां मानते हैं और भगवान को भौतिक पुरुष मानते हैं। वे भक्ति या कृष्ण चेतना में अग्रसर होने के योग्य नहीं होते। ऐसे लोग समाचार पत्रों में छपी कहानियों उपन्यासों तथा काल्पनिक नाटकों में रुचि दिखाते हैं। तो जो काल्पनिक कहानियां हैं तो इनको तो वास्तविक समझते हैं, वास्तविक की तरह उनमें रुचि रखते हैं, और जो वास्तविक भगवान की कथाएं हैं लीलाएं हैं उनको काल्पनिक मानते हैं। भगवान कृष्ण द्वारा द्वारका में भगवान के कार्यकलाप जैसे भगवान के वास्तविक कार्यों का उल्लेख भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत में हुआ है। वे भगवान के कार्यकलापों से पूर्ण है किंतु भौतिकतावादी पुरुष संसार में अपने पद को ऊपर उठाने में लगे रहते हैं और भगवान के ऐसे कार्यकलापों में कोई रुचि नहीं लेते। वे किसी महान राजनीतिज्ञ या संसार के किसी परम धनवान व्यक्ति के कार्यकलापों में रुचि ले सकते हैं किंतु परमेश्वर के कार्यकलापों में हरगिज नहीं। आगे, ऐसे व्यक्ति भगवान के परम आदेशानुसार निंदित होते हैं क्योंकि वे भगवान के कार्यकलाप रूपी अमृत से विमुख रहते हैं, अतः उनकी तुलना निष्ठा भोजी सूकरों से की गई है। निष्ठा भोजी मतलब मल खाने वाले सूअर। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों को न सुनकर भौतिकतावादी पुरुषों की कुत्सित कथाएं सुनते हैं। कुत्सित का मतलब निंदनीय, निंदनीय कथाएं सुनते हैं। नूनम देवेन विहतां ये चाच्युत कथा सुधाम हित्वा श्रृण्वन्त सन्गाथा पुरेशमिव विन्भुजः। तात्पर्य लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यकलापों को सुनने का इच्छुक रहता है, चाहे वह राजनीतिज्ञ हो, धनवान हो या काल्पनिक पात्र हो। ऐसा तमाम व्यर्थ साहित्य कहानियां तथा दर्शन की पुस्तकें हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसा साहित्य पढ़ने में अत्यंत रुचि लेते हैं किंतु जब उनके सामने भगवद गीता श्रीमद् भागवत विष्णु पुराण जैसे ज्ञान ग्रंथ तथा विश्व के अन्य शास्त्र यथा बाइबल या कुरान आते हैं तो वे उनमें रुचि नहीं दिखाते। ऐसे व्यक्ति भगवान द्वारा उसी प्रकार से निंदित होते हैं जिस तरह सूकर होता है, जिस प्रकार सूकर है। सूकर मल खाने में रुचि दिखाता है, यदि उसे घी अथवा दूध की बनी कोई उत्तम वस्तु दे दी जाए तो वह उसे ग्रहण नहीं करता, वह दुर्गंधमय मल को ही सबसे स्वादिष्ट समझता है। भौतिकतावादी पुरुष इसीलिए निंद माने जाते हैं क्योंकि वे दिव्य कार्यकलाप में रुचि न रखकर नारकी कार्यों में रुचि प्रदर्शित करते हैं। भगवान के कार्यकलापों का संदेश अमृत है, इसके अतिरिक्त कोई भी सूचना नारकी है। फिर है? क्या होता है शरीर छोड़ने के बाद उनका? कपिल भगवान कहते हैं, ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों को सूर्य के दक्षिण मार्ग से पितृलोक जाने दिया जाता है, किंतु वे इस लोक में पुनः आकर अपने अपने परिवारों में जन्म लेते हैं और जन्म से लेकर जीवन के अंत तक पुनः वही कर्म करते हैं। दक्षिणेन पथार्यमण पितृलोकम व्रजन्ते प्रजा मनु प्रजायन्ते स्मशानान्ते क्रिया कृतः। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं भगवद्गीता में 9:21 कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति उच्च लोकों को जाते हैं, जब उनके जीवन भर के कर्म चुक जाते हैं तो वे इस लोक में वापस आ जाते हैं। इस तरह वे ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। जो उच्च लोक को गए थे वे उसी परिवार में लौटते हैं जिनसे वे परम अनुरक्त थे। वे जन्म लेते हैं और पुनः उनके कर्म आजीवन चलते रहते हैं। जन्म से मृत्यु तक अनेक अनुष्ठानों का विधान है और ऐसे लोग इन अनुष्ठानों के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं। उसी घर में जन्म लेते रहते बार बार, और कभी कभी तो कर्म ऐसा बिगड़ जाता है तो उसी घर में उनको चूहा बनना पड़ता है या कुत्ता बनना पड़ता है या कीड़ा बनना पड़ता है ना। आगे कपिल भगवान कहते हैं जब उनके पुण्य कर्मों का फल चुक जाता है तो वे दैववश नीचे गिरते हैं और पुनः इस लोक में आ जाते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को ऊंचे उठाकर सहसा नीचे गिरा दिया जाए। ततस्ते क्षीण सुकृता पुनर्लोकम इमं सती पतंती विवशा देव सद्यो विभ्रंशितोदय। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं कभी कभी देखा जाता है कि सरकारी नौकरी में उच्च पद आसीन व्यक्ति अचानक ही नीचे आ जाता है, उसे कोई रोक नहीं पाता। इसी प्रकार सुखोपभोग का समय बीत जाने पर मूर्ख व्यक्ति जो उच्च लोकों में अध्यक्ष पद तक उठने के इच्छुक रहते हैं नीचे गिरकर इस लोक में आते हैं। एक भक्त और सकाम कर्म में आसक्त एक सामान्य व्यक्ति के उच्च पद में ये अंतर होता है। देखो दोनों का पद ऊंचा है ना, जो सकाम कर्मी उसका पद भी ऊंचा है और भक्त का भी पद ऊंचा है। ये अंतर क्या है कि वो ऊपर से नीचे गिरता है ना, और जो भक्त है वो ऊपर जाता है वैकुंठ में जाता है। ये अंतर होता है कि वैकुंठ गया हुआ भक्त कभी नीचे नहीं गिरता जबकि सामान्य व्यक्ति गिरता है, भले ही वह उच्चतम लोक ब्रह्म लोक को ही क्यों ना प्राप्त हो। भगवद गीता में पुष्टि हुई है आ ब्रह्म भुवनान लोका, कि चाहे वह उच्च लोक को ही प्राप्त क्यों ना हो उसे पुनः नीचे आना होता है। किंतु भगवद गीता में ही 8:16 कृष्ण द्वारा पुष्टि की गई है कि माम पेतु तो कौन थे पुनर्जन्म वेदते, हे कुंती पुत्र जो मेरे धाम को प्राप्त करता है वो कभी संसार के बद्ध जीवन में वापस नहीं आता। अब कपिल भगवान माता देवहूति से क्या कहते हैं, अतः हे माता मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप भगवान की शरण ग्रहण करें जिनके चरण कमल पूजनीय है, इसे आप समस्त भक्ति तथा प्रेम से स्वीकार करें क्योंकि इस तरह से आप दिव्य भक्ति को प्राप्त हो सकेंगे। तस्मात् सर्वभावेन भजस्वम परमेष्ठिनम सद्गुणाश्रया भक्त्याम भजनीय पदम भुजम। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं परमेष्ठिनम शब्द का प्रयोग कभी कभी ब्रह्मा के लिए किया जाता है। परमेष्ठी का अर्थ है परम पुरुष, जिस तरह इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा ही परम पुरुष है उसी तरह वैकुंठ में कृष्ण परम पुरुष है। भगवान कपिल देव अपनी माता को सलाह देते हैं कि वे भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाएं क्योंकि यही श्रेयस्कर है। यहाँ ब्रह्मा तथा शिव जैसे उच्चतम पदों में आसीन देवताओं की शरण ग्रहण करने की सलाह नहीं दी गई, मनुष्य को भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। आगे कपिल भगवान कहते हैं कृष्ण चेतना में लगने और भक्ति को कृष्ण में लगाने से ज्ञान विरक्ति तथा आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना संभव है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम यन ब्रह्म दर्शनम। तो यहाँ हमने चर्चा की कपिल भगवान का जो उपदेश है माता देवहूति के प्रति, तो आज का जो श्लोक है भगवत गीता का इसमें भगवान रजोगुणी धारणा का वर्णन कर रहे हैं है ना। तो श्रीमद् भागवत में जो है भगवत गीता के सिद्धांतों को ही और विस्तृत रूप दिया गया है ना। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? इनका प्रश्न है कि कर्दम मुनि जो तपस्या कर रहे थे तो उनकी पत्नी जो देव होती थी तो उन्होंने सब प्रकार के भोगों को त्याग दिया कर्दम मुनि की सेवा में, लेकिन फिर कर्दम मुनि ने इतना जो है भोग ऐश्वर्य क्यों तैयार किया, बहुत बड़ा विमान है और सब प्रकार की भोगी सुविधाएं वो क्यों तैयार की? यहाँ ये समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति में जो है जो भौतिक कामनाएं हैं वो जल जाती हैं। अब वो कामनाएं जो भौतिक कामनाएं हैं वो इतनी तीव्र नहीं होती हैं कि उनको जो है ना कोई व्यक्ति जब पूरा करे तो उससे और कामनाएं पैदा हों। इसी प्रकार से है जैसे कि बीज किसी भी अन्न का जो बीज होता है अगर आप भून देते हैं या उबाल देते हैं तो फिर उसमें अंकुरित होने की शक्ति नहीं होती, अब उससे और बीज पैदा नहीं होंगे। अन्यथा क्या होगा, एक बीज को आप बोते हो है ना तो उससे कितने बीज पैदा होते हैं, असंख्य बीज पैदा होते हैं। इसी वजह से एक भौतिक इच्छा को कोई व्यक्ति पूरी करता है तो उससे असंख्य इच्छाएं और पैदा होती हैं, है कि नहीं। लेकिन वही बीज अगर जो है भगवान की भक्ति की अग्नि में जल जाए, भुन जाए या उबल जाए तो फिर उसमें जो है आप बोते हो तो उससे और बीज पैदा नहीं होंगे। तो उसी प्रकार से जो है देवहूति ने जो है कर्दम मुनि की सेवा की ना, कर्दम मुनि की संगति प्राप्त की है ना, तो भौतिक इच्छाएं जो है ना क्षीण पड़ गई, कमजोर पड़ गई। अब भौतिक इच्छाएं पूरी होती हैं तो और भौतिक इच्छाएं नहीं होती है कि नहीं। तो माता देव होती फिर जो है ना स्वयं ही निर्विण्ण हो गई, विरक्त हो गई है ना। निर्विण्ण नितरा भूमन असत इंद्रिय तर्चनाथ देवभूति कहती हैं, ये असत इंद्रियों की जो कामना है इससे मैं बहुत ज्यादा ऊब चुकी हूँ, बहुत मुझे अब मतलब क्या है बोर हो गई बहुत ज्यादा है ना। तो ये चीज जो है मतलब होती है। लेकिन जहां तक इनकी बात है पुनः पुनः चरबत चरबड़ाना, चबाए हुए को फिर चबाते हैं, चबाए हुए फिर चबाते हैं है ना, तो ये अंतर है। और कोई प्रश्न किसी का, इनका प्रश्न है कि जैसा हमने बताया काम मूड उनको कहा गया है तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी गोपेश्वर महादेव का रोज दर्शन किया करते थे। भगवत गीता में देवताओं की पूजा भी तीन गुणों में बतलाई है भगवान ने, जिसको कि आप कह सकते हैं यज्ञ है। यज्ञ तीन प्रकार का बताया है, तो यज्ञ जो है ना देवताओं की आहुति दी जाती है, देवताओं के लिए आहुति डाली जाती है, तो एक प्रकार से देवताओं की पूजा है यज्ञ भी। तो भगवान ने बताया कि तमोगुण में यज्ञ यानी देवताओं की पूजा कैसी होती है, रजोगुण में कैसी होती है और सत्वगुण में कैसी होती है ना। तो तमोगुण में तो भगवान ने बताया है विधिहीनम, वो विधि वो अविधि पूर्वक करते हैं, वो विधि का ही पालन नहीं करते, अस्त्रष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम, बिना श्रद्धा के करते हैं, मंत्र भी उच्चारण सही नहीं होता है, दक्षिणा भी नहीं देते ब्राह्मण को, तो वो तो तमोगुणी पूजा है ना। और रजोगुणी पूजा वो है जिसमें कि कोई व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है भौतिक कामनाओं को प्राप्त करने के लिए है ना। अभिसंधाय तो फलम दम भार्थम अभी चैवियजते भरस्तम यज्ञ विधि राजसम, तो उसमें कोई व्यक्ति पूजा करता है तो फल का अभिसंधान करके करता है कि मुझे ये फल प्राप्त करना है, मुझे वो फल प्राप्त करना है ना, रजोगुणी पूजा है। और सत्वगुण में पूजा होती है देवताओं की, तो किस प्रकार की होती है, भगवान कहते हैं अफलाकांक्षी फिर यज्ञ विधि दृष्टो यजते विधि दृष्टो, शास्त्र विधि में जैसा बताया गया है उस प्रकार की विधि से वो देवताओं की पूजा करते हैं है ना। इष्टव्य में वित्त मना समाधान है साधु का, तो पूजा करनी चाहिए इस प्रकार से मन को समाधान करके वो पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो सत्वगुण में कोई व्यक्ति अगर देवताओं की पूजा करता है तो भौतिक कामनाओं से नहीं करता वो है ना, तो उससे फिर जो है उसको जिज्ञासा पैदा होती है कि ये मनुष्य का जीवन क्यों प्राप्त हुआ है और ये जन्म मरण का जो कष्ट है क्यों भोगना पड़ रहा है, इस बंधन से कैसे छुटकारा पाए आप समझे ना। क्योंकि सत्वगुण में उसका देवताओं से कोई संबंध नहीं होता है, वो जो है देवताओं की पूजा करता है, पूजा करना चाहिए इसलिए मैं पूजा कर रहा हूं, लेकिन मेरा कोई वैसे संबंध नहीं आपसे। सत्वगुण व्यक्ति जो है ना उन देवताओं से कोई संबंध नहीं रखता है, वो पूजा करना चाहिए इसलिए मैं पूजा कर रहा हूं, बाकी कुछ लेना देना नहीं। जैसे नंद महाराज इंद्र की पूजा कर रहे थे है ना, तो भगवान ने पूजा बंद करा दी, है ना। तो भगवान ने जो पूजा बंद करवाई वो क्यों बंद कराई? क्योंकि इंद्र को अपमान हो रहा था, इंद्र को अपमान हो रहा था। नहीं तो नंद महाराज को कोई इससे वो मतलब कुछ लेना नहीं था। नंद महाराज को, ब्रजवासियों को इंद्र की पूजा से कोई भौतिक कामना नहीं थी कि कुछ भौतिक कामना हमारी पूरी हो जाए, नहीं थी। वो कर रहे थे कि चली आ रही है पूजा और करना चाहिए, इसलिए कर रहे हैं, और कोई उनके अंदर कोई विचार नहीं रहा। तो इस प्रकार से कोई बंधन नहीं है, इसमें कर्म बंधन नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति रजोगुण में है तो फिर जो ना हमेशा सोचता है कि भाई मुझे क्या मिलने वाला है, मैं कितना दे रहा हूँ, मुझे कितना मिलेगा, है ना। तो वो जो है फिर कई प्रकार की भौतिक कामनाएं करते हैं। और कोई प्रश्न किसी का? तो मैं प्रश्न करूं, कपिल भगवान ने जो माता देवहूति को शिक्षा दी है तो उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में दो प्रकार के जो है विवाहित जीवन बताते हैं, कौन से हैं दो प्रकार के विवाहित जीवन? हाँ, एक गृहमेधी जीवन और दूसरा गृहस्थ जीवन, है ना। क्या अंतर है गृहमेधी जीवन में और गृहस्थ जीवन?
परिवार के लिए जीता और गृहस्थ भगवान के लिए।
गृहमेधी जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति, है ना। तो आजकल जो है ना क्या है, विवाहित कोई व्यक्ति होता है तो बस उसका केवल एकमात्र उद्देश्य है इंद्रिय तृप्ति करना, है ना। अभी तो धर्म भी नहीं रह गया, वो तो फिर वो जो है गृहमेधी में भी कम से कम वो धर्म अर्थ काम तीन चीजें तो हैं। अभी तो धर्म भी खत्म हो गया, अर्थ और काम रह गया, लेकिन वो तो पशु का है जीवन। यहाँ तो गृहमेधी में भी कम से कम वो मनुष्य है तो मनुष्य जीवन से कुछ उन्नति वो कर तो रहा है, हालांकि वो उन्नति आगे चल करके फिर मतलब खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ तो कर रहा है वो, और दोबारा अवसर तो प्राप्त कर रहा है मनुष्य के जीवन का, है। लेकिन ये जो जो आजकल का जो जीवन है गृहमेधी से भी ज्यादा बदतर है, बिल्कुल पशु का जीवन है। गृहमेधी तो फिर भी कम से कम मनुष्य कहलाता है, क्योंकि धर्म तो है उसके जीवन में, धर्मेण हीना पशु भी समाना है। तो चार पुरुषार्थों में गृहमेधी का जीवन जो है गृहस्थ के जीवन में चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और गृहमेधी के जीवन में तीन ही है, धर्म अर्थ काम। लेकिन पशु के जीवन में केवल दो ही है, धर्म भी निकल गया, अर्थ और काम है कि नहीं। बस मेहनत करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर छुट्टियां मनाते हैं और काम भोग करते हैं, धर्म और काम ये रह गया है। और प्रभुपाद ने क्या बताया है कि वे भगवान की कथा नहीं सुनते, भगवान की कथा को मानते हैं काल्पनिक, और क्या सुनते हैं? हाँ, जो काल्पनिक उपन्यास हैं, है? और भी जो इस प्रकार की जो कहानियां हैं, रोचक कथाएं कहानियां हैं, उनमें ज्यादा मन लगाते हैं, है? लेकिन जो भगवान की कथाएं हैं ये किसी प्रकार कम नहीं, किसी उपन्यास से कम नहीं है, लेकिन जो भी इस भौतिक संसार में सुख कोई व्यक्ति सोचता है, कल्पना करता है, चाहे वो खेल खेलना है, क्रिकेट मैच देखना है, इससे कुछ सुख की कल्पना करता है, या कुछ और भी कथा कहानियों से, उपन्यास से, या सिनेमा में सिनेमा देख करके जो सोचता है कि सुख प्राप्त होता है, तो वो सब सुख जो है ना भगवान की कथा में मिलता है। भगवान की कथाओं में सब सुख मिलता है, है ना। तो भगवान की कथाएं बड़ी आश्चर्ययुक्त हैं, है ना। तो आज भक्तिमरत प्रभु जो दोपहर का प्रवचन था उसमें बता रहे थे कि जैसे कोई हीरो होता है ना, फिल्मी हीरो होता है, तो जब बड़ा लोकप्रिय हो जाता है तो लोग उस हीरो को पसंद करते हैं, तो फिर उसकी जितनी फिल्में बनती हैं सब फिल्मों को देखते हैं, जो भी फिल्म, है ना। तो उसी प्रकार से भगवान जो ना हीरो हैं, तो भगवान जितने अवतार लेते हैं तो भक्त जो है ना उनके सब अवतारों को सुनते हैं, तो उनकी उसी प्रकार से रुचि होती है भगवान में है? जैसे कि आजकल के लोगों की जो है हीरो में रुचि होती है ना, तो कहते हैं भाई ये हीरो इस फिल्म में उसने ये काम किया, इस फिल्म में उसने ये काम किया, इस फिल्म में ये काम किया है कि नहीं, और ये और ये घटनाएं हुई, वो घटनाएं हुई, ऐसा है ना। उसी प्रकार से जो भक्त लोग हैं वो चर्चा करते हैं भगवान से, इस अवतार में उन्होंने ये रूप धारण किया, इस अवतार में ये रूप धारण किया, ये काम किए, वो काम किए। तो सब जो ना जब इसमें आनंद लेते हैं तो आनंद फिर बढ़ता जाता है, आनंद आमदी बढ़ा, और नई नई बातें आती हैं भगवान के चरित्र की, नई नई बातें आती हैं, है ना। शेष जी जो है भगवान के गुणों का वर्णन अपने हजार मुखों से कर रहे हैं, है ना, और तो भी अंत नहीं मिल रहा उनको। तो ये चीज है, अगर कोई व्यक्ति जानना चाहता है और जो है आनंद लेना चाहता है तो फिर भगवान ऐसा उसे रास्ता देते हैं जिससे उसका आनंद बढ़ता जाता है, उसकी रुचि बढ़ती जाती है, उसको जो है ऐसा रास्ता मिलता जाता है, उसको नई नई जो है ना भगवान की जो लीलाएं हैं वो प्रकट होने लगती हैं। और कोई प्रश्न किसी का? धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पान सारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौणताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे
कृष्ण हरे
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna
Thank you.
Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare